सारी खुशियां आपके दामन में भर चुकी हैं कि अभी भरना बाकी है? जीवन सच में खुश है आपका? बहुत अच्छा। लेकिन एक सच बात बोले, जब कोई भी ब्राह्मण भाई बहन कोई भी आपको पूछते हैं कि आप खुश हो, तो तुरंत बता देते हो कि बहुत खुश है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है सिर्फ खुद को पता है, परिवार में क्या चल रहा है खुद को पता है, सामाजिक अवस्था में आपकी अवस्था क्या है खुद को पता है। मतलब बस बोलने के लिए हम बोलते हैं कि हम खुश हैं। जो खुश होता है उसको सामने वाला कभी नहीं पूछता कि क्या आप खुश हो। हमें कोई पूछ रहा है इसका मतलब खुश नहीं है, इसलिए सामने वाला पूछ रहा है। ज्ञान बहुत ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है, देने वाला तुम परम श्रेष्ठ। बस इस ज्ञान को सही विधि से अगर जीवन में अपनाते हैं तो सच में सारी खुशियां हमें उपलब्ध हो जाती है। बस सही विधि से अपनाना बहुत जरूरी है। आप सबको पूरा निश्चय है कि राजयोग का ज्ञान स्वयं परमात्मा ही सिखा रहा है। बहुत अच्छा। मतलब ज्ञान अगर परमात्मा दे रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ज्ञान में कोई कमी है। तो कमी कहाँ है? हमारे अंदर उठाने में कमी है, तो इस कमी को ठीक करना पड़ेगा। जब सही तरीके से उठाएंगे तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही सब कुछ मिलेगा। अगर संगम में परमात्मा है और हम कहेंगे ज्ञान भी है, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। सत्युग से ज्यादा संगम में मिलता है सब कुछ। मिलने की बात इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान जो श्रेष्ठ है उससे जो दिखना चाहिए हमारे अंदर वो नहीं दिख रहा है। बहुत श्रेष्ठ है लेकिन जो प्रत्यक्षता हमारे अंदर से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कारण सही तरीका, सही विधि। ज्ञान का पहला पाठ हम कौन है? आत्मा। अब सभी को पक्का निश्चय आप आत्मा हो, एक बार चेक कीजिए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको पक्का निश्चय है आप आत्मा है तो आत्मा समझ के कर्म बोल और संकल्प क्यों नहीं करते? देखिए, और सत्संग बहुत सारे दुनिया में, उनके जैसा ये ज्ञान नहीं है कि आए तो आए, किया तो किया, चले तो चले। मत आओ, आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा, एनर्जी जाएगा। अगर आप आ रही हो जीवन को सफल, सुखी, परम आनंद की अनुभूति में लाना चाहते हो तो फॉलो करो। ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, इसलिए बस सुनी सुनाई बातें नहीं है। सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है। जितना धारण करते जाएंगे जीवन उतना खुशहाल होता जाए। तो जो पहला पाठ है आत्मिक स्थिति का, वो एक ही पाठ ऐसा है जिस पाठ में सारी प्राप्तियां हैं, जीवन की सारी प्राप्तियां। मतलब किसने कितना उठाया है आप जाने, लेकिन आत्मिक स्थिति में ही सब कुछ है। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, कंपनी सेंटरों पर, सब जगह क्लासेस, हर कोई पूछता है हमें सफलता चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में सफलता चाहिए। तो क्या करें? इवन जो पारमार्थिक, यानी हम कहेंगे कि जो हम भक्ति मार्ग कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं ज्ञान में, उसमें भी सफलता चाहिए। तो क्या करें? सफलता का एक ही महामंत्र है आत्मिक सिद्धि, और कुछ नहीं। बाकी कितना भी करिए कुछ नहीं मिलेगा। हमने सब कुछ आजमा के देखा है, सारे रिसर्च में सब कुछ ट्राई करके देखा है, लेकिन आत्मिक स्थिति से जो प्राप्ति आपको होगी वो किसी से नहीं होगी, आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति स्वयं में एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में सारी प्राप्तियां अपने आप आपकी ओर आती है। आज हम छोटे छोटे प्रयोग सीखेंगे। ये कोई क्लास नहीं, ये लेक्चर नहीं, ये परिवार का एक डिस्कशन है। परिवार के एक सदस्य एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे, कोई क्लास नहीं लेक्चर, क्योंकि जब लेक्चर होता है, क्लास होता है, तो हम समझते क्लास करने वाला बड़ा है, हम छोटे हैं, ये किसने कहा है, सभी एक समान है, या कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं, बड़ा एक ही ऊपर बैठा है, बाकी सभी छोटे हैं उसके बच्चे। तो कहना यही है, इन छोटे छोटे प्रयोगों को हम जब जीवन में धारण करते हैं तो जीवन पूरा सफल हो जाता है। आपको पक्का निश्चय है कि आत्मिक स्थिति में सारी प्राप्तियां हैं, अनुभव किया है आत्मिक स्थिति की प्राप्तियों का। आपको एक प्रयोग बताते हैं, छोटा सा करके देखिए, कल के क्लासेस में भी हुए ये सब बातें। आप स्वयं को आत्मा समझकर एक बार प्रयोग करके देखिए, स्वयं को आत्मा समझकर जानबूझ के कोई विकर्म करने का प्रयास कीजिए, ट्राई करके देखिए आपसे होता है क्या। स्वयं को आत्मा समझकर किसी को गाली देने का प्रयास कीजिए जानबूझ के, और स्वयं को आत्मा समझकर किसी के लिए भी निगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प चलाने का प्रयास कीजिए। निकलेंगे? अगर आपको पूरा निश्चय भी है कि नहीं हो सकता, तो फिर हम करते क्यों नहीं? आज दुख का कारण क्या है? विकर्म, बुरे बोल और निगेटिव संकल्प, यही दुख का कारण है। और आत्मा समझने के बाद अगर हम जबरदस्ती भी करें तो भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं समझ? ज्ञान का पहला पाठ है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का जितना प्रयास करेंगे पीछे जाएंगे, क्योंकि पहला पाठ पक्का नहीं किया। जैसे पहला पाठ पक्का होता है, आप अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, भगवान की 2500 साल से हमने भक्ति की, बाबा की 2500 साल के बाद वो मिला है, और वो आने के बाद भी मेहनत करनी पड़े तो उसके आने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। सच बोलते आप, उन्हें उसने बिना मेहनत का काम सिखाया है। आत्मिक स्थिति पूरा बिना मेहनत का काम है, 100% सफलता है उसमें बिना मेहनत की। बाबा 80 साल से कह रहे हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि उसी में सारा सार है, बाकी जितना भटकेंगे भटकते ही जाएंगे। बस जब आप अपने आप में लौट आओगे, जब आप अपने आप में लौट आओगे, सब कुछ आपकी तरफ लौट आएगा। आज हर इंसान भटक रहा है प्राप्तियों के पीछे। प्राप्तियां कहां है पता है? प्राप्तियां पीछे, परछाई बन के पीछे, सामने से प्रकाश आ रहा है, प्राप्ति पीछे है। अगर आप पीछे देखने जाएंगे भटक जाएंगे। सामने बाबा है, बीच में आप हो, प्राप्तियां पीछे। जितना बाबा की तरफ आप देखेंगे उतना प्राप्तियां आपके पीछे आएंगी, और जितना प्राप्तियों के पीछे भटकेंगे बाबा से बेमुख हो जाएंगे। तो कहना यही है, पहले अपने आप में लौट आ जा। हर इंसान आज प्राप्ति के पीछे भटक गया है, सबको पाने के पीछे अपने आप को खो दिया है उसने। जब आप अपने आप को पाओगे तो सब आपको मिल जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब जहां हो वहां ही स्थित हो जाओ और अपने आप में लौट आओ। जैसे आप अपने आप की तरफ लौट आओगे सब कुछ मिल जाएगा। तो आत्मिक स्थिति स्वयं में एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आने के बाद आपसे कोई भी विकर्म, बुरे बोल और बुरे संकल्प चलाने से भी नहीं चल सकते। आत्मिक स्थिति में आने के बाद आप दुख मांगो फिर भी आपको दुख नहीं मिलेगा। प्रयास करके देखो, राजयोग साधारण ज्ञान नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसमें सब कुछ अपने आप मिल जाता है। बस जब आप अपने आप को मिल जाओगे, जब आप अपने आप को मिल जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को मिलना आत्मिक स्थिति। तो जितना हो सके पहला पाठ पक्का कीजिए। आज भी हम समान का उच्चारण करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। समान काम नहीं कर रहे, कारण क्योंकि जो मैं बोल रहा है वो मैं ये बोल रहा है ऊपर वाला, मैं ये बोलना चाहिए, ये मैं 1008 बार नहीं 1,08,000 बार भी बोले ये मैं, समान काम नहीं करेगा। और ये मैं बस एक बार भी बोले उसको वास्तविक रूप से बोलने की भी आवश्यकता नहीं, इस मैं को पता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बोलने की भी आवश्यकता नहीं। तो कहना यही है, हर बात आप जब भी मैं उच्चारण करते हो नोटिस कीजिए कौन सा मैं आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। आज दिन भर में हम किससे मिलते हैं, हम जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे नहीं मिलते हैं, हम शरीरों से मिलते हैं, मेल या फीमेल से मिलते हैं, पोस्ट पोजीशन से मिलते हैं, क्वालिफिकेशन से मिलते हैं, स्टेटस से मिलते हैं, हम वो है उनसे नहीं मिलते। आप नोटिस कीजिए अपने आप, अगर आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर बैठते, बहुत बार एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री आकर बैठते हैं और यहाँ कोई ऐसी आत्मा आकर बैठती है जिसका ड्रामा अनुसार लौकिक में पार्ट भिखारी का है, आत्मा भिखारी नहीं है, हर आत्मा उसकी संतान है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, इस जन्म का पार्ट कर्मों अनुसार भिखारी का है। दो आत्माएं यहाँ आकर आपके सामने बैठी है, जब आप प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, और इस महान आत्मा से जिनका पार्ट बेगर का है भिखारी का, उनसे बात करेंगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, चेक कीजिए। क्या दोनों से बात करते वक्त आप समस्थिति में रहेंगे, नहीं रहेंगे, मतलब आपने क्या देखा, ऊपर ही ढंग देखा। कोई ज्ञानी आत्मा है इसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं, दोनों से बात कैसे करेंगे। कोई महान श्रेष्ठ योगी है बाबा का बच्चा, कैसे बात करेंगे। दादी जानकी जी बैठी है और बाहर के ऐसी आत्मा बैठी है जिनका कोर्स भी नहीं हुआ है, कैसे बात करेंगे आप दोनों से। ये डिफरेंस क्यों, ये फर्क क्यों है, कारण ज्ञान को नहीं समझा। जब तक आप अपने आप में फर्क देख रहे हो आत्मिक स्थिति का और देहाभिमान का, तब तक आप दूसरों में फर्क देखोगे। छोटा बच्चा है और उम्र से कोई बड़ा है, आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती, छोटे बच्चे से कैसे बात करेंगे और जो उम्र से बुजुर्ग है उनसे कैसे बात करेंगे। ये फर्क क्यों, ज्ञान को नहीं समझा। अब चेक कीजिए अपने आप को, अब किनसे मिल रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं। आज दुख का कारण है ये असमानता, हम दूसरों को तुलना करके बात करते हैं, उनसे कंपैरिजन करके बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, ये देखकर बात कर रहे हैं। मतलब हम उनके गुणों से और अवगुण से बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर परमात्मा ने हमें स्वीकार नहीं किया होता, हमें खुद को पता है हम कौन सी अवस्था में, हमको हम में से कोई भी उसके लायक नहीं था, उसने लायक बनाया और उसने पास में दे दिया, तो हम दूसरों को कैसे उनके लायक की में गिन सकते हैं। अगर स्वयं परमात्मा हमें स्वीकार कर रहा है, सबसे नीचे गिरे हैं ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ भी ब्राह्मण बने हैं, सबसे नीचे भी गिरे ब्राह्मण, तो अब सोचिए वो तो बहुत श्रेष्ठ है, हम कहते हैं बाहर वाले आते 33 करोड़ छोड़ के बाकी बची हुई सारी आत्माएं हमसे भी बहुत श्रेष्ठ है, तो हम देखते बहुत बार कंपैरिजन करते हैं। तो चेक कीजिए अपने आप को, दिन भर में आप किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आज सारे संसार में दुख का कारण ही एक ही बात है, हम जिनके पास होते हैं उनके पास नहीं होते, फिजिकली उनके पास होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं, इसके कारण तनाव चल रहा है। और जिनसे बात कर रहे हैं उनको ऊपरी तौर से देखकर बात करते हैं, किसी का शरीर बहुत सुंदर है और किसी के शरीर में बीमारियां है, शरीर बहुत कुरूप है, क्रमानुसार, तो चेक कीजिए कैसे बात करेंगे आप। शरीर सुंदर है तो बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे, और शरीर की सुंदरता नहीं है तो रिगार्ड नहीं। किसी की बुद्धि बहुत शक्तिशाली है, इंटेलिजेंस है, और किसी के पास नहीं है, नहीं है। तो हमें उसी से बात करनी पड़ेगी, उसी से व्यवहार करना पड़ेगा जो वो है। आप अपने आप को क्या समझकर औरों को क्या समझकर उनसे व्यवहार करते हो, यही आपका जीवन है। आपकी जो समझ है वही आपका जीवन है। जीवन का दूसरा नाम है समझ। इस समझ के चक्कर में सारी दुनिया भूल भुलैया के चक्कर में फंस गई। समझ, समझ दो प्रकार की होती है, एक होती है सच्ची समझ और एक होती है झूठी समझ। सच्ची समझ एक ही है, मैं आत्मा हूं, इसके परे कुछ नहीं है। बाबा ने दो दिन पहले कहा ना, भूल जाओ मैं ये हूं वो हूं, मैं सुंदर हूं ये हूं धनवान हूं, भूल जाओ मैं आत्मा हूं। कहना यही है, सच्ची समझ एक ही है, मैं आत्मा हूं, इससे परे मुझे कुछ पता नहीं। सभी आत्मा है, फिर कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है ये बातें उसमें नहीं आती। बस आत्मा, सामने वाले भी आत्मा मैं भी आत्मा। तो आप दिन भर में अपने आप को क्या समझकर औरों को क्या समझकर उनसे व्यवहार करते हो, यही आपका जीवन है। छोटी सी बात है समझ, लेकिन सबसे खतरनाक भी है और सबसे शक्तिशाली भी है समझ, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं विवेक या विस्टम, अंग्रेजी में कहते हैं विस्टम। नोटिस कीजिए, सुबह में उठने से लेकर रात सोने तक आप अपने आप को कौन से समझ में चलाते हैं, कौन से समझ? क्या आत्मा समझकर चलते हैं, या मेल फीमेल, माँ बाप, पति पत्नी, रिश्ते, टीचर, स्टूडेंट, जो भी है लौकिक में, जो भी आपकी पोस्ट पोजिशन, दिन भर में आपके सारे व्यवहार कौन सी समझ में चलते हैं, नोटिस कीजिए। सारा खेल समझ में, समझ से चलता है। आपको छोटा सा प्रयोग बताते हैं। आपने से कल भी क्लास में सुनाया छोटा सा, आपने से किसी को हमने सामने बुलाया, ये समझ क्या करती है देखिए। आप में से किसी को हमने सामने बुलाया और कहा कि 10 मिनट के लिए आप डॉक्टर का ड्रामा करके दिखाइए, यहाँ स्टेज के ऊपर नाटक करके दिखाइए। आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन 10 मिनट के लिए आपको डॉक्टर का नाटक करना है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है, डॉक्टर कैसे बोलता है, कैसे दवाइयाँ देता है, चेकअप करता है, कैसे विचार करता है, कैसे एक्सप्रेशन निकालता है, सारी जानकारी को इकट्ठा करके आप सामने आए स्टेज के ऊपर, और आपने क्या किया, 10 मिनट के लिए अपने आप को क्या समझा कि अभी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हूँ समझने के कारण आपकी स्थिति डॉक्टर के जैसी बन गई। आपकी स्थिति डॉक्टर के जैसी बनने के कारण आपके संकल्प डॉक्टर के जैसे चले, संकल्प से आपके बोल डॉक्टर के जैसे निकलने लगे, बोल के कारण आपके कर्म डॉक्टर के जैसे होने लगे। देखिए, आपने अपने आप को डॉक्टर समझा, इसके कारण आपकी स्थिति डॉक्टर के जैसे, स्थिति के कारण संकल्प, संकल्प के कारण बोल, और बोल के कारण कर्म डॉक्टर के जैसे हो गए, और इन कर्मों को देखकर सामने वालों ने समझा कि आप डॉक्टर। आपकी समझ ही सभी की समझ बन जाती है आपके प्रति। सारी दुनिया आपको आपकी दृष्टि से देखती है, कोई अपनी दृष्टि से आपको नहीं देखता। आप जिस दृष्टि से अपने आप को देख रहे हो, उसी दृष्टि से सारी दुनिया आपको देखती है। उनके पास अपनी दृष्टि नहीं है, आपकी दृष्टि से ही आपका संसार चलता है, आपकी सृष्टि चलती है। तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, वही लोग आपको समझेंगे। तो जो समझ है वो चेक कीजिए, आप क्या समझ रहे हो। अगर आप माता पिता समझ रहे हो तो बच्चे आपको परेशान करेंगे, पति पत्नी समझ रहे हो तो पति पत्नी से आपको दुख मिलेगा, और रिश्तों में चल रहे हो वही मिलेगा। जहां आप जॉब कर रहे हो वहां अगर अपने आप को एम्प्लॉय समझ रहे हो, वहां का सर्विस करने वाला व्यक्ति, तो आपको वहां से बॉस से आपको दुख मिलेगा। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हो तो बिजनेस में घाटा होगा और दुख मिलेगा 100%। आपकी समझ ही सब कुछ है और कुछ नहीं, इस समझ से ही सारा जीवन चलता है। यह और कोई बात है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ही बात है समझ। और आप दिन भर में चेक कीजिए आप अपने आप को क्या समझ रहे, आपकी आपके प्रति दृष्टि क्या है, लोगों की आपके प्रति क्या दृष्टि है। भूल जाओ लोगों को, भूल जाओ, आप अपने आप को देखो कि आप अपने आप को क्या समझ रहे, आपकी स्वयं के प्रति दृष्टि क्या है। हमारा मोटो क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम विश्व परिवर्तन करने वाले नहीं, वो कार्य उसका है, वो करने वाला है। हमारा सबसे बड़ा कार्य है स्व परिवर्तन करना, तो स्व को देखना है। हम कभी कभी कहते कि और हमारी तरफ इस नजर से देख रहे हैं, इस दृष्टि से देख रहे हैं। चेक कीजिए उस मोमेंट में आप अपने आप को उस दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए वही लोग आपको उस दृष्टि से देख रहे हैं। वो उनकी दृष्टि इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आपकी दृष्टि इस्तेमाल कर रहे। हमेशा याद रखिए, दुनिया में हर कोई आपको आपकी दृष्टि से देखता है। यहाँ कोई आपको सुख नहीं दे रहा है, कोई आपको दुख नहीं दे रहा है। जो कुछ दे रहे हो आप अपने आप को दे रहे हो, कोई भी आपको सुख दुख नहीं दे रहा है। हमेशा याद रखिए, गलती से भी किसी को नहीं कहना कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ये दुख है, आप मुझे दुख दे रहे हो। या किसी की वाह वाह नहीं करना गलती से भी कि आप हो इसलिए मुझे सुख मिल रहा है। गलत फहमी आपकी, जो आपके पास है वही आपको मिल रहा है, जो आपके पास है। तो हमारा जो पहला पाठ है आत्मिक स्थिति का, वो जब पक्का हो जाएगा तो सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी जीवन में आज जो कपड़े से लेकर, भोजन से लेकर, गाड़ी से लेकर, मकान से लेकर, परिवार से लेकर, समाज तक, यहाँ तक प्रकृति तक जो कुछ है आपकी स्थिति से, आपकी स्थिति से आपको सब कुछ मिल रहा है। आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से सब कुछ मिल रहा है। आपके पास स्थिति की जितनी ऊर्जा है उसी के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा। दुनिया में हर किसी के पास दो प्रकार की ऊर्जा है, एक आप पिछले जन्म से यहाँ लेके आए हैं जिसको आप भाग्य कहते हो या दुर्भाग्य कहते हो, ऊर्जा या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। पिछले जन्म से यहाँ लेके आए भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में। दूसरी ऊर्जा यहाँ सत्कर्म करके, दान पुण्य करके, या फिर ज्ञान में चल के बाबा के साथ योग लगा के आप कमा रहे हो, दूसरी ऊर्जा। जितनी स्थिति की ऊर्जा होगी उस अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा। हम कहते हैं बड़ी बातें हमें नहीं मिल रही, कारण एक ही है, बड़ी बातें मिलने के लिए उन बातों की जितनी ऊर्जा है हमारे पास नहीं है। छोटा सा उदाहरण, आप जब कपड़े के दुकान में जाते हैं तो 10 कपड़े आपके सामने रखे हैं, बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत अच्छा कलर है, सबसे अच्छे ब्रांड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कॉस्टली है। आपने वही कपड़ा क्यों चुना जो आप घर पर लेके आए, कारण क्या है? 10 कपड़े आपके सामने, आपने उसी कपड़े को हाथ लगाया, उसी को घर लेके क्यों आए, कारण क्या है? आज इस शहर में 10 बिल्डिंग है, आपने फ्लैट खरीदा, वही फ्लैट क्यों खरीदा उसी बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग छोड़ के? सब बिल्डिंग के रेट समान है, जो आपके लिए अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हैं उनको, लेकिन उस बिल्डिंग में एक फ्लैट क्यों खरीदा? हर चीज आपके जीवन की, आपने जो वस्तु ली, मोबाइल लिया, जो भी लिया, उसी ब्रांड का मोबाइल क्यों खरीदा? कारण उस कपड़े की एनर्जी, उस फ्लैट की एनर्जी और उस मोबाइल की एनर्जी आपसे मैच होती है, इसलिए वही आपके जीवन में आए। ये लॉ है यूनिवर्स का, आपके जीवन में वही चीज आएगी जिसकी और आपकी एनर्जी मैच होती है। आपके जीवन में वही व्यक्ति आएंगे जिनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच होती है। यहाँ सब कुछ एनर्जी से चलता है, हर खेल एनर्जी से होता है, ऊर्जा से चलता है, किसी को दोष नहीं दे सकते हम। जितना आपके पास है उतना ही आपको मिलेगा, न कम न ज्यादा। तो उस कपड़े की एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल मैच होती है, इसलिए आप उसी कपड़े को लेके आए घर में, उसी फ्लैट में रह रहे हो जिस फ्लैट की एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच हो। अगर उस कपड़े की और फ्लैट की एनर्जी आपसे मैच नहीं हो, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है या फिर आपने जोर जबरदस्ती से खरीदा है किसी के कहने के ऊपर, तो वो फ्लैट या वो कपड़ा आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही। तो जीवन में हर बात हमारे, फिर वो सुख हो या दुख हो, यहां से आता है। जितनी ऊर्जा आपके पास है उसके अनुसार पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सेंटर, स्थान, हर चीज आपके जीवन में आएगी। योग में हम यही सीखते हैं ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है। जैसी ऊर्जा बढ़ती जाएगी आपके जीवन में स्थिति से, सारी बातें अपने आप आती जाएगी। आज अभी जो आप हो वो आज के नहीं हो, अभी जो आपका जीवन चल रहा है, कपड़े से लेकर भोजन से लेकर खाने पीने से लेकर हर बात में, फ्लैट हो या फिर परिवार हो, ये आज का जीवन नहीं आपका, ये 6 महीने पहले वाला जीवन है आपका। इसका कारण आपको बताते हैं। आज भी अगर आप में से किसी को हम यहाँ बुलाते हैं और आपका अगर ऑरा चेक करते हैं, शरीर के बाहर एक ऊर्जा होती है सूक्ष्म शरीर की, जिसको हम ऑरा कहते हैं, अगर आपका हम ऑरा चेक करते हैं तो आपके ऑरा की लाइट को देखकर आपको बता सकते हैं कि अगले 2 महीने के बाद आपके जीवन में शारीरिक बीमारियां कौन सी होंगी, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी अगले 2 महीने के बाद। नोटिस कीजिए इस लाइट को देखकर, सिर्फ ऑरा को देखकर, कि आपकी शारीरिक अवस्था क्या होगी, मानसिक अवस्था क्या होगी, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक अवस्था क्या होगी, इस लाइट को देखकर आपको बताया। ये लाइट आई कहाँ से? 4 या 6 महीने पहले आपने जो विचार चलाए उसकी ऊर्जा भी यहाँ बनी है। 4 या 6 महीने पहले आपने जो विचार चलाए उसकी ऊर्जा भी ऑरा में बनी है। 2 महीने के बाद वो अपना रूप लेने वाली है। अगर विचार आपने अच्छे चलाए हैं तो रिजल्ट अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा। अगर उससे विपरीत विचार चलाए तो वही मिलेगा जो आपके विचार है। तो 6 महीने पहले या 4 महीने पहले आपने जो सोचा है वो अभी आपके जीवन में हो रहा है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आज दिन भर में आप जो जो सोच रहे हो एक डायरी में लिख के रखिए, उस डायरी को कोई अलमारी में रखिए, 4 या 6 महीने बाद निकालिए, वही हो रहा होगा जो आपने सोचा है। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं कि आज मेरे जीवन में क्या हो रहा है पता नहीं, आपको ही पता है। 4 या 6 महीने पहले जो आपने सोचा था वही आपके जीवन में आज हो रहा है। तो सोचिए आप क्या समझकर आप सारे संकल्प चला रहे हैं, क्या समझकर, वही आपका जीवन होगा अपने आप। तो कहना यही है, जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि सारी चीजें आपकी ओर खींची चली जाती है, मेहनत करनी नहीं पड़ती। एक होता है मेहनत करना, बाहुबल से नाम मान शान धन कमाना मेहनत करके, दूसरा होता है बिना मेहनत के कमाना। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, IAS IPS की ऊंची पढ़ाई करते हैं, कलेक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े पोस्ट पर, सबसे बड़ी पोस्ट। दिन भर में कोई काम नहीं होता, बस साइन करते हैं और पगार लेते हैं। क्या किया, 5 साल 7 साल अच्छी पढ़ाई की, अच्छे पोस्ट पोजीशन पर बैठे, सारा बैठ के खा रहे। इवन रिटायरमेंट के बाद भी आराम से खाना है, कोई मेहनत नहीं है। और दूसरे लोग होते हैं, कोई एजुकेशन अच्छा नहीं लेते, जिसके कारण सारी आयु मेहनत करनी पड़ती, सेम सिचुएशन है। यहाँ एक लोग हैं जो भक्ति मार्ग में, परमार्थ में बहुत मेहनत करके सारी प्राप्तियां कमाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे इस ज्ञान को समझकर आत्मिक स्थिति में आकर सब कुछ अपने आप मिलता जा रहा है एक साइन करके, क्या चाहिए वही साइन करके और कुछ नहीं। तो बाबा का ज्ञान ऐसा है, बिना मेहनत के सारे प्राप्त किया आत्मिक स्थिति। एक मुरली के वरदान में आपने सुना होगा कि अगर चुंबक खींच सकता है तो क्या आप नहीं खींच सकते। चुंबक तो प्रकृति का तत्व है, आत्मा तो चैतन्य है, तो आत्मा चैतन्य प्रकृति को नहीं खींच सकती। हर बात आपके जीवन में आएगी, जो चाहिए वो आएगा, बस आप आपके जीवन में आ जा रहा है। आप ही खो गए हो इसलिए सब कुछ खो गया है, तो आप आपकी तरफ लौट आओ सब कुछ मिल जाएगा। आज से 6 महीने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके देखिए, 6 महीने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, ट्राई करके देखिए। लेकिन 6 महीने तक कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ऑलरेडी आपने सोचा था वही आपके जीवन में होने वाला है 6 महीने तक, क्योंकि आपने ही डिसाइड करके रखा था, आपने ही संकल्प क्रिएट किए थे। तो आज से आत्मिक स्थिति वाले संकल्प क्रिएट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आज दुनिया में एक ही दुख का कारण है, हम जिसे देहाभिमान कहते हैं, लेकिन देह को जरा साइड में रखकर हम कहते हैं अभिमान, अहंकार। अहंकार ही सभी दुखों का कारण है। शुद्ध अहंकार भी होता है ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान का अहंकार, योग का अहंकार, सेवा का अहंकार, धारणाओं का अहंकार। जो चीज आपकी नुकसान कर रही है, अच्छी भी हो वो अच्छी नहीं होती कभी। हम कहते हैं ब्राह्मण पवित्र है, हम सभी जरूर पवित्र है, हर कोई पवित्र है, लेकिन अगर पवित्रता का अहंकार है तो पवित्रता नहीं, वो अपवित्रता है। क्योंकि जो पवित्र होता है उसको कभी अहंकार नहीं होता, और उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती मैं पवित्र हूं। तो अब नोटिस कीजिए, ज्ञान में आने के बाद जिन जिन धारणाओं को आपने अपनाया है, क्या वो धारणाएं आपका फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है। अगर आपका योग ऊंचा उठ रहा है तो योग में आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली योग में फायदा ही होता है, लेकिन योग का अगर अहंकार है मैं बहुत अच्छा योगी आत्मा हूं तो नुकसान ही होने वाला है। ज्ञान का अहंकार है कि मेरे पास सारे ज्ञान रतन पड़े हुए हैं, तो उसको ही फायदा है। ज्ञान का अहंकार है तो नुकसान है। तो अपने आप को नोटिस कीजिए, ज्ञान में भी आने के बाद कहां डिफरेंस हो रहा है। अहंकार तो नहीं आ रहा है किन बातों में। कभी कभी हमारे पास, सिस्टर शिवानी जी भी कहते हैं ना, फ्लाइट से हम जाते हैं, फ्लाइट में तो नॉनवेज बहुत सारा आता है सबके लिए, तो कभी कभी कहते हैं नाक दर्द कर देते हैं, छी करते हैं, तो ये भी गलत बात है। जो ज्ञानी होता है उसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने भी नॉनवेज खाने के लिए बैठे ना पास में तो भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो छीछी नहीं करे। ज्ञानी होता है, योगी होता है, और अगर थोड़ा आगे पीछे ज्ञान योग है डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। चेक कीजिए अपने आप, कुछ भी हो जाए आपके सामने, ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि आपको नीचे नहीं लाएगा। अगर नीचे ला रहा है तो ज्ञान नहीं उठाया है, योग ठीक से नहीं उठाया। नोटिस कीजिए अपने आप, हर बात में नोटिस कीजिए, कहां आप आगे जा रहे हैं और कहां नीचे आ रहे हैं। अगर आपको दुनिया की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आप आगे जा रहे हैं, और अगर फर्क पड़ रहा है तो चेक करो अपने आप, चेक करो। तो आज से एक बात पक्की करेंगे व्यवहार में कि हम आत्मा हैं, और आत्मा समझकर ही हर किसी से व्यवहार करेंगे। ट्राई करके देखिए 6 मास के लिए, जितना भी नुकसान हो, बच्चे जितने भी तंग करें, पति पत्नी से जितना भी आपको परेशानी हो, कोई बात नहीं, अब सहते जाएंगे आत्मा समझ। सच बोले तो आत्मा समझने के बाद सहने की अवस्था भी नहीं होती, मतलब आत्मा समझने के बाद आपके पास ऐसी कोई घटना ही नहीं घटित हो सकती जो आपको दुख देने वाली हो। आत्मा समझने के बाद अगर आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, जिस दिन आपकी स्थिति बहुत ऊंची है तो दुख देने वाले लोग भी आपको सुख देंगे, लेकिन अगर आपकी स्थिति नीची है तो सुख देने वाले लोग भी आपको दुख देंगे, इतना पक्का है। कुछ भी करो सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, आप आत्मिक स्थिति में हो, इस रास्ते से गुजर रहे हो, उस जब तक आप, चलो यहाँ से सतारा से आप बॉम्बे जा रहे हो, तो जो जाने का रास्ता है, आपकी स्थिति अगर बहुत ऊंची है, आधुनिक स्थिति में हो, तो जाने वाले रास्ते में आपको ऐसी एक घटना भी नहीं दिख सकती जिस घटना से आपको दुख मिले। मतलब आप सोचिए, आपकी स्थिति के कारण रास्ते में जितने होने वाले एक्सीडेंट है वो भी टल गए। मतलब जिससे दुख मिले ऐसी एक भी घटना आपके आसपास नहीं घटित हो सकती, क्योंकि सुख आपको चाहिए, क्योंकि आप सुख की स्थिति में हो, आत्मिक स्थिति। तो कहना यही है, जितना आप आपकी स्थिति में आएंगे ना, आप अपने आप के लिए सुखदायी बनेंगे बल्कि विश्व के लिए सुखदायी बनेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां सुख की बरसात होगी। किसी के भी घर में जाएंगे, किसी भी बाजार में जाएंगे, रास्ते से जाएंगे, सुख ही सुख मिलेगा वहां। देखिए, एक बार एक कहानी थी, बुद्ध जी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक पागल हाथी वहां से आ रहा था, सारे लोग दौड़ रहे थे और बुद्ध को कह रहे थे कि भाग जाओ, हाथी आ रहा है। सारे बाजार को तहस नहस कर दिया। बुद्ध शांत रीति से चल रहे, तो सारे लोग उनको समझा रहे थे कि भाग जाओ। जब हाथी सामने आया, बुद्ध ने बस हाथ किया, हाथी जगत ही जगह रुक गया। देखो, बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, फिर भी उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके पास सारी शक्तियां थी। हमारा तो गुरु कौन है? परमात्मा है, इतने साल से पढ़ा रहा है। हाथी को नहीं रोकना है, बस अपने आप को रोकना है। हाथी को रोकना छोड़ दीजिए, अपने आप को, अगर हम कहां भटक रहे तो अपने आप को रोकना है। आज सारा विश्व पागल हो चुका है, आने वाले समय में पागलपन इतना बढ़ेगा विश्व की आत्माओं का, सारी आत्माएं आपकी ओर दौड़ के आएंगी। फिर आप कहेंगे, अरे मेरे पास ही नहीं तो मैं तेरे को क्या दूं? फिर वो पूछेंगे, इतने साल से क्या किया भगवान के पास रहकर, इससे अच्छा हम हैं। मतलब बाबा हमें वो बातें देखना चाहता है। बाबा सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है, तो निमित्त कौन बनेगा? आप बनोगे। तो आपकी वो स्थिति सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचनी चाहिए कि आप बाप समान बनकर विश्व को कुछ दे सको। तो अपने आप को जिस समय आप आपकी स्थिति में लाओगे, आपकी स्थिति बाप समान बन जाएगी। कहना यही है, आपके पास सारे पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, बस अपने आप को जानो, ठीक से पहचानो आप क्या हो, और आपके कर्म बोल और संकल्प शुरू करो, फिर देखो कमाल हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंट बताते हैं आत्मिक स्थिति की पावर क्या है, आप करके देखिए। जो कोई जॉब कर रहे हैं तो आप आत्मा समझ के जॉब कीजिए। आपके जो बॉस है वो भी एक आत्मा है, वो बॉस नहीं आत्मा है। आप उनको जब भी मिलेंगे आत्मा समझ के देखिए उनको। तो आप जब जॉब कर रहे हैं तो आत्मा समझ के वहां जॉब कीजिए। आपके जो बॉस हैं आपको वही काम देंगे जो आप सबसे अच्छी तरीके से करते हैं, अपने आप देंगे। इससे क्या होगा, आप आत्मिक स्थिति में लेकर उस काम को पूरा करेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा और कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, मतलब सभी आपसे खुश रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आत्मा समझ के बिजनेस कीजिए। जितने भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो भी आत्मा है, कस्टमर नहीं हो, आत्मा है। तो आप देखेंगे आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपको सुख देने वाले, प्रॉफिट देने वाले, नुकसान देने वाले एक भी ऑर्डर आपके पास नहीं आए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एग्जाम्स तो खत्म हो गए, आने वाले साल के लिए आपको बताते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आत्मा समझ के पढ़ाई कीजिए, या फिर आपके बच्चे बच्चों को सिखा सकते हैं। आत्मा समझ के किताब निकाल के देखिए, जब आपके एग्जाम आ रहे हैं बच्चों को कहिए कि आत्मा समझ के किताब निकाले और आत्मा समझ के पढ़ना शुरू कीजिए। बच्चे उसी क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे जो उनके एग्जाम में आने वाले हैं, अपने आप दूसरे क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है, पहले से पता चलता है। आत्मा उसी काम को करती है जो उसके लिए सहज होता है। वैसे तो सारे कार्य आत्मा के लिए सहज है, लेकिन उस मोमेंट में उसके लिए जो सहज है उसको अपने आप करती जाती है। तो बच्चे उसी क्वेश्चंस को लर्न करेंगे जो उनके एग्जाम में आने वाले हैं, मैजिक है आत्मिक स्थिति। अब जब बाजार में जाते हैं और प्रयोग करके देखिए, अब जब बाजार में जाते हैं सब्जी खरीद रहे हैं तो अब सब्जी वाले को सब्जी वाला नहीं देखे, वो भी एक आत्मा है, उसको आत्मा देख के स्वयं को आत्मा समझ के सब्जी ऑर्डर कीजिए। फिर देखिए बस मैजिक देखिए एक दिन क्या होता है, वो ऐसी सब्जी निकाल के देगा जो सबसे अच्छी होगी आपके लिए। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा ये सब्जी खराब है जरा बदल के दे दो, कोई आवश्यकता नहीं, उसके हाथ अपने आप वो आ जाएंगे जो सबसे अच्छी है आपके लिए। और एक प्रयोग करके देखिए, मतलब आत्मिक स्थिति में सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं। जब आप सब्जी काट रहे हैं आपका ध्यान नहीं, मतलब लक्ष्य नहीं सब्जी के ऊपर, लेकिन आपका ध्यान आत्मिक स्थिति में कमाल देखिए, अब आत्मा समझ के सब्जी काटे, सब्जी उसी प्रपोर्शन में कटेगी जो सबसे अच्छा होगा। दूसरी बात, सब्जी में जो खराब भाग है अपने आप आपके हाथ से साइड में चला जाएगा, बस काटते गए अपने आप हाथ से साइड चला जाएगा। करके देखिए, जब आप मुरली पढ़ रहे हैं आपकी आंखें मुरली के ऊपर हैं, लेकिन ध्यान पूरा आत्मिक स्थिति में, आंखें आगे पीछे कोई बात नहीं। जब आप आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली पढ़ेंगे तो मुरली के आगे के शब्द अपने आप आपके मुख से निकलते जाएंगे, क्योंकि 5000 साल पहले सुनी है, अंदर है रिकॉर्ड, अपने आप शब्द निकलते जाएंगे। कहना यही है, आत्मिक स्थिति में रहकर आप जो भी कार्य करेंगे सफलता आपके पीछे भागे। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक सफलता के पीछे भागते और दूसरे जिनके पीछे सफलता भागती है। बाबा ने सफलता पीछे भगाने वाला ज्ञान सुनाया है, मेहनत वाला ज्ञान, अपने आप सफलता आपके पीछे आएगी। और ऐसी सफलता आएगी जिसमें आप संतुष्ट रहेंगे, आत्मिक स्थिति में ऐसी सफलता आपके पीछे आएगी जिसमें आप संतुष्ट रहेंगे। और बॉडी कॉन्शियसनेस में सफलता तो मिलेगी, करोड़ों रुपए तो कमाएंगे, नाम मान शान धन सब कमाएंगे, लेकिन संतुष्टता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। आज हर इंसान हर कर्म कर रहा है, हर कार्य जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारण आप यहाँ मुरली भी सुनने आ रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, कारण क्या है बताएंगे हम? आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, हर बात से आपको खुशी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी खुशी आपके पास है। अब जब संकल्प करते हो ना कि मुझे खुशी चाहिए, तो नियम ये है प्रकृति का, अगर आपने संकल्प किया कि मुझे धन चाहिए, तो नियम ये है प्रकृति का, जो चीज आपने किया कि मुझे चाहिए पहले वो खो जाएगी आपसे। ऑलरेडी आपके पास खुशी है, लेकिन अगर आपने संकल्प किया कि मुझे खुशी चाहिए, तो आपकी जो खुशी है वो खो जाएगी और बाद में मिल जाएगी, तो जो पीरियड है उसमें आपको दुख भोगना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, चाहिए चाहिए कभी नहीं कहते, क्योंकि जब आप चाहिए बोलते हो तो आपके पास जो है वो भी खो जाता है, फिर आपको वो मिल जाता है। तो जीवन में चाहिए वाला संकल्प कभी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, सारे सुख आपके पास है, सारी खुशियां आपके पास है, तो चाहिए के पीछे नहीं भागना। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे सब कुछ हिमाश हो जाएगा खुशियों से, फिर आप कोई भी कर्म करो उसमें खुशी मिलेगी। आज सेवाओं में कभी कभी हो जाता है, झाड़ू लगाना है तो थोड़ा लगता है कि नीचे वाला काम है, क्लास कराना है तो बहुत बड़ा काम है, क्यों लगता है? क्योंकि शमशान है। अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो क्लास कराने से ज्यादा खुशी झाड़ू लगाने में मिलेगी आपको, अगर आप आत्मिक स्थिति में, खुशी तो यहाँ भी है, लेकिन कौन सी स्थिति में आप कर्म कर रहे हैं चेक कीजिए। आत्मिक स्थिति के ऊपर इतना लंबा क्लास लेने का कारण एक ही है, क्योंकि वही बात पक्की है, हम क्या करने वाले हैं? बाबा कहते हैं ना, विश्व परिवर्तन, तो हमारा मोटो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन करना हमारा जैसे कि बहुत बड़ी किताब लिखना है, बहुत बड़ी किताब है, लेकिन किताब लिखने के लिए एबीसीडी सीखना पड़ता है। एबीसीडी से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनेंगे, वाक्यों से पैराग्राफ बनेगा, ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ मिला के एक पाठ बनेगा, ऐसे बहुत सारे पाठ मिला के किताब बनेगी। तो विश्व परिवर्तन की किताब अभी बहुत दूर है, पहले एबीसीडी आत्मिक स्थिति की पक्की करनी पड़ेगी। जब तक एबीसीडी पक्की नहीं है तब तक किताब लिखना दूर की बात है। इससे बाबा भी कहते ना अभी तक छठी आठवीं कक्षा में है, अभी दसवीं पास भी नहीं। कारण ये बात, आत्मिक स्थिति। हमारा हर व्यवहार आत्मिक स्थिति वाला होना चाहिए, हर व्यवहार, हर कर्म, बोल और संकल्प। आज हमने अभी तक सीखा है दृष्टि देके भोजन को खाना है, दृष्टि देके, एक मिनट दृष्टि देते, तीन मिनट दृष्टि देते, फिर भोजन को खाना है इसमें कि एक मिनट तो दृष्टि देती, बाद में कहां दृष्टि कहां सृष्टि, बस भोजन। अरे ये कौन सी बात होगी, हम तो कहते हैं दृष्टि भी नहीं दीजिए, लेकिन आत्मिक स्थिति में खा लीजिए। आत्मिक स्थिति में खाना ही दृष्टि देना है। बस हम जब किसी को दृष्टि देते हैं, सामने बैठे तब, मिलते हैं तब, भोजन को देते तब, यही दृष्टि है। और बाद में कौन सी है फिर, हर सेकंड दृष्टि में रहना चाहिए, हर संकल्प आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, हर सेकंड दृष्टि है। मतलब आप नोटिस कीजिए, जब हम किसी को दृष्टि दे रहे तब उस समय आत्मिक स्थिति की दृष्टि, और जब देख रहे तो क्या बॉडी कॉन्शियसनेस, ये कौन सा नियम है। हर सेकंड दृष्टि रहनी चाहिए, हर सेकंड। अब किसी वस्तु को देखो, व्यक्ति को, मतलब आत्मा को देखो, पदार्थ को देखो, हर सेकंड आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। ज्ञान ये नहीं सिखाता कि जब तक बैठे हैं तब तक दृष्टि दे दो आत्मिक। इसलिए कभी कभी हम किसी किसी को पूछते हैं, किसी किसी को कहते हैं कि जरा दो मिनट दृष्टि दे दो, आपके पास पावर है उतने, आप भी दूसरे को दृष्टि दे सकते हो, आपके पास पावर है, बस अपने आप को आप ठीक से नहीं जान पाए, और इसलिए अपने आप को कम समझ रहे हो। बाबा का हर बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, कोई कम नहीं यहाँ पर, कोई ज्यादा नहीं, बस अपने आप को आपकी स्थिति में लाओ, सब कुछ आपके पास आ जाए। तो आज इसे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, करेंगे सारे दिन में कम से कम 1008 बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ। एक घंटे में 108 बार, या सारे दिन में कम से कम 1008 बार कि मैं आत्मा हूँ। सारी दुनिया कोमा में चली गई है, जब कोई कोमा में जाता है याददाश्त चली जाती है, बार बार उसको याद दिलाते हैं, भाई आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, आप प्रेसिडेंट हो, आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तब जाके वो धीरे धीरे याद में आता है। तो सारी दुनिया कोमा में चली गई, अभी हम सबको कोमा में से कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, कौन? बाबा नहीं निकालेंगे, ना बाबा निकालेंगे, ना ब्रह्मा बाबा मम्मा, ना दादिया, ना वरिष्ठ भाई, ना हमारी दीदिया। हर कोई आपको मार्गदर्शन करेगा, गाइड करेगा क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको हाथ को पकड़ कर लेते, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, खुद को ही, खुद को कोमा में से निकालना पड़ेगा, स्वयं को ही। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा आपको कि मैं आत्मा हूँ, तब जाके याददाश्त ठिकाने पर पहुंचे। याददाश्त हो गई है सबकी, मैं शरीर हूँ, पोस्ट पोजिशन समझ कर बैठे हैं, हर कोई समान है, इससे निकलना पड़ेगा, हर कोई समान है। तो जब समानता की भाव में आएंगे तब हम सतयुग को लाएंगे। सतयुग में लास्ट पोजीशन वाला चांडाल हो या विश्व महाराजन हो, समान, सबके प्रति समान समभाव रहता है। वहां कोई पोस्ट पोजिशन है, मर्तबा है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस नहीं बदल देता। इसलिए ऐसे वहां नहीं देखते कि आप चांडाल हो या गरीब हो, हम विश्व महाराजन है, ये कॉन्शियसनेस नहीं वहां पर। अगर इस कॉन्शियसनेस में हम चल रहे, आप छोटे हो हम बड़े हैं, हम छोटे हैं आप बड़े हो, समझ लीजिए सतयुग में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस ही गलत है। सतयुग में आना है तो समभाव की कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, समानता में आना पड़ेगा, न ऊंच न नीच। बाबा भी हमेशा कहते हैं सुख दुख से परे, ऊंच नीच पाप पुण्य से परे, निंदा स्तुति से परे। आत्मिक स्थिति में आने के बाद अपने आप हो जाते हैं, फिर कोई स्तुति करे आपकी या निंदा करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आत्मिक स्थिति में आने के बाद। तो सबसे बड़ा अभ्यास है आत्मिक स्थिति का। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा हमारे पास ही है, बस बाबा और हम इसके बीच में बॉडी का पर्दा, जब ये हट जाएगा तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में रखना, मतलब लेबल में रखना, इसका मतलब क्या है पता है आपको? जब तक हम लेवल में चल रहे हैं, नाम मान शान पद पोजीशन जो भी है, शरीर का लेवल है, जब तक हम लेवल में चल रहे हैं तब तक हम सबकी गिनती पेबल में है। पेबल यानी पत्थर, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिए। जब तक हम अपने आप को लेवल लगा रहे हैं तब तक हम सभी पत्थर है, पेबल है। डायमंड भी एक पत्थर ही होता है, जब उसको तराशा जाता है तब डायमंड बनता है। जब ये पत्थर हट जाएगा तो सच्चा कोहिनूर बाहर निकल आएगा। पत्थर को हटाना पड़ेगा, लेवल को निकालना पड़ेगा। तो कहना यही है, कुछ ऊंच नीच नहीं देखना। छोटी सी बात सबको कहते हैं, किसी को दुख लगे तो सच्चे दिल से माफी मांगते पहले से। ज्ञान के अंदर बहुत बार हम किसी को पूछते हैं कितने साल होंगे, कितने साल क्या करना है। ज्ञान के अंदर हम कितने साल से चल रहे हैं, ज्ञान के अंदर हम कितने साल से चल रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान हमारे अंदर कितने साल से चल रहे हैं। साल क्या करना है, सच बोले ये भी दुख लगेगा फिर भी माफी मांगते। साल पूछते पूछते खार उतरने को आ गए फिर भी साल पूछ रहे हैं। क्या करना है साल का, ज्ञान को उठाओ, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 50 साल से कोई ज्ञान में चल रहा है, अपनी स्थिति का पता नहीं, 3 माह से ज्ञान में चल रहा है, अपनी स्थिति पक्की है, आगे कौन है अब चेक कीजिए। कहना यही है, अपने आप को किसी से कंपेराइज मत कीजिए, आप ज्ञान को उठाइए और चल दीजिए। कोई नीचे है उसका ड्रामा, कोई ऊपर है उसका ड्रामा, आप अपने आप को चेक कीजिए आप कहां पर है। ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, सही तरीके से उठाइए सारी प्राप्तियां मिल जाएगी। तो जितना अपनी स्थिति में आप चलेंगे सारी प्राप्तियां आपके पास होंगी। हम कहेंगे कुछ समय के लिए, जितना समय आप पुरुषार्थ के लिए देते हैं, जैसे अगर 2 घंटे दिन में पुरुषार्थ के लिए देते हैं तो आज से 1.5 घंटा आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए, 1.5 घंटा, आधा घंटा योग लगा। आपको पता है आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में ज्ञान योग धारणा और सेवा अपने आप होती है। ज्ञान लेना नहीं पड़ता, अपने आप आपके अंदर आता है, समझ अपने आप आती है। अगर सही कर्मों की बोल की संकल्प की समझ है तो ज्ञान तो इमर्श हो गया आपके अंदर। योग अपने आप लग जाता है, क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में और कुछ है नहीं। जैसे आत्मिक स्थिति में आएंगे तो बाबा की याद आएगी और कुछ नहीं याद आएगा। धारणाएं तो अपने आप होती है, और अब जहां भी जाएंगे आपसे वाइब्रेशन गुड़ जा रहे, सेवाएं हो रही है। ज्ञान को ठीक तरीके से समझे, आपकी पहचान आपकी स्थिति कराती है, आपकी स्थिति। अगर हमारी दादी जी यहाँ आती हैं, बाहर वाले आत्माओं को पता नहीं कि कौन है दादी जान की जी, लेकिन जैसे ही बाहर वाली कोई आत्मा दादी जी के सामने आती है तो दादी जी की स्थिति से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं उस वाइब्रेशंस को पहचान कर ही सामने वाली आत्मा बोलेगी कोई महान आत्मा है। दादी जी ने अपना नाम भी नहीं बताया मैं कौन हूँ, दादी जी की स्थिति ने बता दिया मैं कौन हूँ। या गांव में जब कोई सिद्ध पुरुष आता है वो कभी नहीं किसी को बुलाता, सारा गांव उसके पीछे भागता है। कैसे भाग गया, वो अपनी स्थिति में है कि मैं सिद्ध पुरुष, उससे वाइब्रेशंस निकल रहे सिद्धियों के, इसके कारण सारे खींचते चले जाते हैं उसकी तरफ। तो हम कब बनेंगे ऐसे, इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, बनना चाहिए। पुणे में एक माता मिली थी पहले क्लास में, वो कह रही थी कि हमारे घर में ज्ञान में कोई नहीं चल रहा है, कोई सहयोग भी नहीं दे रहा है तो क्या करें। उनको बस एक ही बात बताई कि आप एक काम कीजिए, कुछ दिन के लिए आत्मिक स्थिति में रहकर भोजन बनाए, आत्मा समझ कर भोजन बनाए और कुछ नहीं कीजिए, न सुमान दिए न सकाश देना है न कोई संकल्प करना है। आत्मिक स्थिति की पावर आपको बता रहे, सुमान सकाश संकल्प तो और अभी बहुत दूर है, उनकी पावर तो बहुत है आत्मिक स्थिति। उनको कहा कि भोजन बनाए, दूसरे क्लास में 15 दिन के बाद दूसरा क्लास था, उन्होंने उनका अनुभव सुनाया। वो कहते कि 8 दिन के लिए मैंने आत्मिक स्थिति में रहकर भोजन बनाया, मैं किसी को कुछ कहा न सकाश दिया, 8 दिन के बाद घर के सभी सदस्यों के कोर्स हो गए, बस अपनी स्थिति में रहकर भोजन बनाया और कुछ नहीं किया, न कोई संकल्प किया कि परमात्मा आया है वर्षा ले लो, बाबा आया है सुख दे रहा है, कोई संकल्प नहीं, बस आत्मा। लेकिन क्या कमाल है, किसी भी एक घर में सिर्फ एक आत्मा अगर अपनी स्थिति में आ जाए तो पूरा घर बाबा के ज्ञान में आ जाए, पूरी आत्मिक स्थिति, पूरी आत्मिक स्थिति कमाल है। किसी भी एक सेंटर में अगर तीन आत्माएं अपनी स्थिति में आ जाए, सिर्फ तीन आत्मा है, तो आप आज जहां बैठे हो इससे 20 गुना बड़ा हॉल आपको मुरली के लिए लेना पड़ेगा, रोज की मुरली के लिए आत्मिक स्थिति। आज हम इतनी सारी प्रदर्शनियां लगा रहे हैं, बाबा कहते हैं ना हमेशा इतने 80 साल से महाशिवरात्रि की मुरली में भी सुना है, लगाना चाहिए। लेकिन 100 को परिचय दिया, 100 में से 10 ने सुना, 10 में से 5 हैं, 5 में से 2 का कोर्स हुआ, 2 में से 1 चेहरा, वो भी चिंता करता। अभी आप प्रयोग करके देखिए, जितना हो सके अपनी स्थिति का अभ्यास कीजिए, शिव के घर का पता अपने आप मिल जाएगा, पिता के घर का पता उसके बच्चों को अपने आप मिल जाएगा, आप मीडियम बनोगे। क्योंकि जो मीडियम है, जिस राउटर से नेट जानी चाहिए वो राउटर एक्टिवेट नहीं है, वाईफाई वाला राउटर को एक्टिवेट कर दीजिए, इंटरनेट अपने आप ग्लोबल इंटरनेट तो आ रहा है उससे, परमात्मा से, बस राउटर ऑन होना चाहिए, वाईफाई ऑन हो जाएगा, सभी अपने आप खींचे आ जाएंगे। आत्मिक स्थिति अगर आप चाहते सच्चे दिल से सभी आत्माओं को परिचय मिले, आप आत्मिक स्थिति में आ जाए, सबको परिचय मिल जाए और आपका जीवन इतना सुखदायी होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और आप आपका जीवन जियो आत्मा समझ के। दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है मत सोचो, उसके साथ वही होगा जो उसका पार्ट होगा, आप उसका पार्ट नहीं बदल सकते। अब खुद का पार्ट नहीं बदल सकते तो दूसरों का पार्ट क्या बदलेंगे, तो उनके पार्ट को देखकर आप क्यों विचलित होते हो, प्रभावित होते हो, मत होना, बस आप आपकी स्थिति में रहना, आपकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को आपकी जगह पर लाओ, आत्मिक स्थिति, फिर देखिए जीवन कमाल की हो जाएगी, इतनी कमाल की हो जाएगी जो अभी तक आपने अनुभव नहीं किया। हर कर्म बोल और संकल्प आत्मिक स्थिति में, जब कहां भी आप मधुबन में जाते हो, मतलब आत्मिक स्थिति में आने के बाद आपसे गलती नहीं होती, एक भी गलती नहीं होती, करना भी चाहो फिर भी नहीं होगी आपसे गलती आत्मिक स्थिति में, क्योंकि आत्मिक स्थिति में सारी सफलताएं समाई हुई है, सारी सफलता। और आने वाले समय में हर कोई तभी टिका रहेगा जब आपके पास आत्मिक स्थिति हो। अच्छा हो रहा है हम क्लास में तो आ रहे, बहुत अच्छा वायुमंडल है, दीदियों की स्थिति बहुत अच्छी है, दादियों की स्थिति बहुत अच्छी है, भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी, सबकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो उस वायुमंडल में हम जब तक है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से नीचे चले गए, रूटीन में आ जाते हैं, माना आत्मिक स्थिति ठीक नहीं की, इससे जो ताकत है वो अंदर नहीं भर पा रही है। अगर आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बॉम्बे में एक एक्सपेरिमेंट किया, आत्मिक स्थिति की ताकत आपको बताते हैं, फिर राजयोग की भी ताकत क्या है आप जानेंगे। दुनिया में एक 17 सेकंड का फॉर्मूला है, 17 सेकंड का फॉर्मूला है, 17 सेकंड के लिए अगर आपके संकल्प एक, मतलब आपकी मन बुद्धि एक संकल्प के ऊपर टिक जाती है 17 सेकंड के लिए, तो वो संकल्प सच हो जाता है। दुनिया का फॉर्मूला है, आपको नेट के ऊपर मिलेगा, अब्राहम हिक करके फिलोसोफर है उनका है, 17 सेकंड फॉर्मूला गूगल में डालेंगे आपको मिलेगा। तो 17 सेकंड के लिए अगर आपकी मन बुद्धि एक संकल्प के ऊपर टिक जाती है तो वो संकल्प सच हो जाता है। हमने बॉम्बे में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक योगी आत्मा को कहा कि 17 सेकंड के लिए आपको आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, 17 सेकंड, 17 सेकंड के लिए आत्मा समझना, एकाग्रता। अब आपको लगेगा कि 17 सेकंड किसी संकल्प के ऊपर बुद्धि टिकाना तो बहुत ईजी है, लेकिन याद रखिए 17 सेकंड में 1700 मिली सेकेंड है, 1700, वैसे तो 17000 भी हो जाएंगे उसको नैनो सेकंड में, और मिली के मिली में लेके जाएंगे, तो 1700 मिली सेकेंड है, तो एक भी मिली सेकेंड में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। कंप्लीट 17 बना 17। तो एक योगी आत्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको कहा कि 17 सेकेंड के लिए आपको आत्मा समझना है, आत्मी स्थिति का अभ्यास करना है। एक्सपेरिमेंट हमने स्टॉप किया, उनको बिठाया था, बहुत श्रेष्ठ योगी आत्मा। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 13 सेकेंड तक वो आत्मा पहुंची। 13 सेकेंड के बाद उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लगी, कांपने लगी, और उन्होंने जबरदस्ती आत्मिक स्थिति को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही कि सहन नहीं हो रही बॉडी को। सोचिए 13 सेकेंड में आत्मा से इतनी पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है जो बॉडी को सहन नहीं हो रही, बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही। उसका कारण भी आपको बताते हैं, वाइब्रेट क्यों हो रही। वो कहते हैं कि ये अलग ही स्थिति है, क्योंकि इतनी ऊर्जा निकल रही है। आपको अगर किसी पॉजिटिव ऊर्जा में डाला गया, बहुत पॉजिटिव है, ज्यादा सहन नहीं होगी, आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही सहन होगी। कारण आपको बताते हो क्यों नहीं सहन होगी। हम कहते ना हाथ नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन हाथ उठ गया, मुख से बोलना नहीं था लेकिन शब्द निकल गए। इसका मतलब हमारे ऑर्गन्स, हमारे पुल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी यह हाथ किससे बना है? पेशियों से बना है। पेशियों मतलब नेगेटिविटी हाथ में नहीं है, पेशियों में, सेल्स में। विकारों से बना हुआ शरीर है, तो सेल्स के अंदर नेगेटिविटी है। जैसे वो आत्मा आत्मिक स्थिति में आ गई, तो आत्मा समझने के कारण आत्मा से कौन सी एनर्जी निकल रही है? पॉजिटिव। सेल्स में कौन सी है? नेगेटिव। तो दोनों का टकराव हो गया, उसको सहन नहीं हो रही, इसलिए बॉडी वाइब्रेट। तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, तो सारे सेल्स ना कर्मेंद्रिय शीतल बन जाएंगे। मतलब आत्मिक स्थिति जैसे बढ़ती जाएगी, 5 चलो 17 सेकेंड नहीं, लेकिन 5 सेकेंड 2 सेकेंड 8 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे करते करते फिर सारी कर्मेंद्रिया शीतल बन जाएंगी। शीतल बनने के कारण कर्मेंद्रिय में जो सेल्स है वो भी शांत हो जाएंगे, कोई भी विकर्म आपसे नहीं होगा। आत्मिक स्थिति, तो आप सोचिए 13 सेकेंड में आत्मा से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही जो शरीर को सहन नहीं हो रही। अभी उस 13 सेकेंड में राजयोग करके उसकी एनर्जी डालेंगे तो क्या होगा? सोचिए, राजयोग साधारण योग नहीं है। 5 मिनट करेंगे ना आत्मा समझ, पूरा आत्मा समझ, पक्का योग। 5 मिनट में सारा शरीर जल जाएगा, आत्मा शरीर छोड़ देगी, सहन ही नहीं होगी एनर्जी, सारे सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 5 मिनट में। हम भी नहीं कर सकते, 1 घंटा इम्पॉसिबल है, 2.5 घंटा गुरु की बात है। प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, भला आप मुरली में सुन रहे 8 घंटा योग करना है, 1 घंटा बैठ रहे, 5 घंटा बैठ रहे, लेकिन प्रैक्टिकल आपके सामने रख रहे हैं जो रिसर्च हुआ। 1 घंटा हम भी योग नहीं कर सकते, आपको क्लियर बोल रहे हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करना उतनी लगन से, रेगुलर एकाग्रता से इम्पॉसिबल बात। अगर आप याद करते जाएंगे सारे संसार को भूल जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी कर्मातीत होगी तो सेवा कौन करेगा? सेवाए बहुत बाकी है, आत्माओं को परिचय देना बाकी है, परिवार के अकाउंट बाकी है, सारे समाज के अकाउंट बाकी है, तो सारी विधियां प्राप्त करेंगे अंत में। लेकिन हम कहना यही चाहते कि आत्मिक स्थिति में इतनी ताकत है, राजयोग में उससे भी ज्यादा ताकत है, बस सही विधि पकड़ना जरूरी है। ऐसे मत कीजिए कि हम आते हैं बैठते हैं। अगर दीदी जी ने आपको कहा कि चलो अभी हम 2 घंटा योग करेंगे, तो 2 घंटे में कितने घंटे अंदर बजेंगे आपको पता है, क्योंकि जबरदस्ती हो रहा है, आपके दिल से नहीं हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती कभी नहीं कीजिए अपने आप से। सबसे बड़ा पाप है दुनिया का खुद से जबरदस्ती करना, खुद को मार रहे हो आप। अब से जितना हो रहा है ना कीजिए, लेकिन सच्चे दिल से कीजिए। 2 घंटा नहीं कीजिए, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 10 सेकेंड नहीं कीजिए, लेकिन अच्छे से अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद कीजिए। 10 सेकेंड नहीं, क्वालिटी वाला कीजिए, क्वांटिटी मत कीजिए, क्वालिटी कीजिए। थोड़ी योग की गहराई जानेंगे क्या चीज। अब समझ लीजिए इन बातों को, ज्ञान बहुत है, 10 मिनट में हम क्लास पूरा करते हैं। तो योग क्या चीज है देख लीजिए। अभी तक जहां जहां क्लासेस हुए सभी बच्चों का अध्ययन करने के बाद एक बात पता चली है, सभी ब्राह्मणों का बाबा के बच्चों का अध्ययन करने के बाद एक अनुमान निकला है। अनुमान ये है जो कहां भी आप योग करने बैठते हैं, मधुबन में है, पांडव भवन, शांतिवन, आपके घर में, क्लास में, कहां भी योग करने बैठे, बाबा की फोटो होती है सामने, ब्रह्मा बाबा की होती है और शिव बाबा की होती है ऊपर। ये अनुमान निकला है, ये निष्कर्ष निकला, ये देखा गया है कि बाबा के जितने भी बच्चे योग करने के लिए बैठते हैं कहां पे, उसमें से 99% आत्माएं फोटो को देखती रहती है। फोटो को देखकर योग नहीं होगा, ये भक्ति है। बाबा हमेशा कहते हैं चित्र को नहीं देखो, विचित्र को याद करो। याद करना है बाबा को, फोटो को नहीं देखना। उनका अनुभव अच्छा रहता है कि बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, शांति मिली, आनंद आया। आज भी मंदिर में जाकर किसी भी मूर्ति के सामने बैठिए, ये सब कुछ मिलेगा। ब्रह्मा बाबा तो नेक्स्ट टू आवर सोल है, तो फिर उनको देखकर आनंद क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। नेक्स्ट टू आवर सोल है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश करने के लिए आत्मा समझकर परमात्मा यानी बाबा को ही याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फोटो को देखना मना हट योग है। बहुत बार ऊपर एक लेजर लाइट लगी रहती है, बल्ब होता है छोटा, बहुत से सेंटर होता है, मधुबन में भी होता है, बहुत से बच्चे बल्ब को देखते रहते हैं। अपने बल्ब के साथ योग लगा रहे या बाबा के साथ लगा रहे, अब छिलकी जग में आप क्लैरिटी से जाना पड़ेगा। बल्ब के साथ योग लगाकर ना यहाँ का बिल कम आएगा ना लाइट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। छिलकी जग में आप बल्ब के साथ योग नहीं लगा रहे, वो हठियोग हो गए। त्राटक करते हैं ना, पेंसिल की नोक को देखते रहते हैं, नाक की नोक को देखते हैं, बीप को देखते हैं, मोमबत्ती को देखते हैं, दीवार पर कुछ निकालते चित्र और उसकी तरफ देखते रहते हैं, त्राटक हठियोग। हठियोग नहीं करना है, याद करना है। इसलिए देखिए बहुत बार मतलब इस प्रकार से नहीं जाना, हम क्लैरिटी में जाएंगे 10 मिनट में। बहुत बार है ना जब हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं, कहा बाबा ने तो कहा है आत्मा समझ के बैठो। तो जैसे आत्मा समझ के याद करना शुरू करते हैं थोड़े समय में खुद को भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, बाबा ही याद रहता है। योग नहीं हुआ, योग माना आत्मा और परमात्मा दोनों की याद, एक की याद नहीं है। जब याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, जब ध्यान आत्मा की तरफ चला जाता है तो बाबा को भूल जाते हैं। जब बाबा की तरफ ध्यान चला गया तो खुद को भूल गए और बाबा की तरफ, सॉरी खुद की तरफ गया तो बाबा को भूल गया। दोनों बातों में योग नहीं हुआ। और कभी कभी इतना अच्छा योग लग जाता है, गहरा योग लग जाता है कि दोनों को भूल जाता है। मैं कहा हूँ, बाबा कहाँ है पता नहीं, सब उठ के चले जाते हैं, हो गया योग। कहाँ ध्यान, चेक किचक में आओ, थोड़ा सा कीजिए, क्वालिटी वाला कीजिए, घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं। इसलिए साकार मूल्यों में हमने बहुत बार सुना है, बाबा कहते, बाबा को साकार में बहुत से बच्चे कहते थे कि बाबा मेरा 8 घंटा योग होता है, बाबा कहते थे मेरा ही नहीं होता तो तेरा क्या होगा। बाबा क्यों कहते थे, बाबा को पता है योग लगाना साधारण बात नहीं है। इसलिए बाबा ने आत्मिक स्थिति का कितना अभ्यास किया, कहते हैं दीवारों पर लिखा, नोटबुके भरी, जसोदा आत्मा, ये आत्मा, मैं आत्मा, क्यों किया, क्योंकि आत्मिक स्थिति के बिना योग नहीं होगा, जितना भी करेंगे टेम्पररी होगा। कहना ये है आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, योग की विधि हम जानेंगे, ठीक करेंगे, अभी तक करते आए उसमें एडिशन करेंगे। योग किससे कहाँ किया जाता है, बुद्धि से, मन और बुद्धि से। बाबा हमेशा कहते हैं ये बुद्धि योग है, मन और बुद्धि से योग होता है। मन क्या करता है, संकल्प उत्पन्न करता है, बुद्धि क्या करती है, चित्र निर्माण करती है। हमेशा जब तक आपकी बुद्धि चित्र निर्माण नहीं करती तब तक मन उसके ऊपर संकल्प नहीं चलाएगा। जब तक आपकी बुद्धि चित्र निर्माण नहीं करती तब तक मन संकल्प नहीं चलाएगा। अभी तक हमने सुना था कि मन पहले संकल्प करता है, लेकिन पहले बुद्धि चित्र निर्माण करती है। जब तक बुद्धि चित्र निर्माण नहीं करती मन संकल्प नहीं करेगा। जैसे बुद्धि ने कोई चित्र निर्माण किया मन संकल्प करना शुरू करता है। प्रैक्टिकल देखिए, जैसे बुद्धि ने आपके चित्र निर्माण किया ताजमहल का, मन संकल्प करेगा तुरंत, ये आगरा में है, शाहजहां ने बनाया, सेवन वंडर्स में से एक वंडर है, मुमताज के लिए बनाया, मतलब उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में जितनी जानकारी संस्कारों में भरी है वो सारी जानकारी मन में बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं संकल्प। तो बुद्धि जिस चित्र को निर्माण करती है मन उसके ऊपर संकल्प चलाता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भरी हुई है। तो जैसे आपकी बुद्धि ने चित्र निर्माण किया किसी बात का, तो उस बात के, उस वस्तु के, व्यक्ति के, पदार्थ के, स्थान के वाइब्रेशन आपकी ओर आते हैं, ये नियम है। जिस चित्र को आप बुद्धि से याद करते हो उसकी ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होती है। इसलिए हमेशा ध्यान बुद्धि को कहा जाता है, बुद्धि को ध्यान कहते हैं। ध्यान लगाओ मतलब आपकी बुद्धि लगाओ, मन नहीं लगाना, मन नहीं लग सकता कभी। मन का स्वाभाविक गुण है गति और बुद्धि का स्वाभाविक गुण है स्थिरता। तो बुद्धि को स्थिर करना है और मन को गति देनी है, हम उल्टा कर रहे हैं बहुत बार। मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं और बुद्धि को गति देने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जिसका जो स्वाभाविक गुण है वही आपको मिलेगा। तो कहना यही है बुद्धि को स्थिर करना है, जहां आपकी बुद्धि स्थिर होगी उसकी ऊर्जा आपकी ओर आएगी। प्रैक्टिकल में देखिए, अगर आपकी बुद्धि ने चित्र निर्माण किया एक खट्टी मीठी, जिसको नमक लगाया है, तीखा नमक लगाया है, ऐसी इमली, ऐसी इमली का चित्र निर्माण किया आपके मुंह में डाले, पानी आ गया, इमली तो नहीं लाई हमने, बस चित्र निर्माण किया, या देखी भी नहीं, दिखाई भी नहीं आपको, आपके बुद्धि ने चित्र निर्माण किया इमली का, मतलब आपकी बुद्धि जिन जो चित्र निर्माण करती है उसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है, मन उसको फील करता है, मन ने इमली की ऊर्जा को फील किया, उसके कारण मुंह में पानी आ गया। क्योंकि मन ने फील किया इसलिए वाइब्रेशंस निकले, वाइब्रेशंस निकले, सलाइवा बाहर निकल आई, पानी आ गया। सेम सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ को आप याद करते हो उसकी ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होती है। इस याद में और एक बात याद आई, बाबा हमेशा कहते हैं किसी भी देहधारी को कभी नहीं याद, किसी भी देहधारी को उसका कारण आपको पता है, आज से आप याद नहीं करेंगे। अगर आप 6 महीने के लिए लगातार देहधारी को याद करना, मैंने शरीर को याद करना, आत्मा को तो याद नहीं करते हैं, अगर 6 महीने के लिए लगातार किसी भी आत्मा के शरीर को आप याद करते हो 6 महीने के लिए, तो उस शरीर की सारी बीमारियां आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती, 6 महीने में सारी बीमारियां। ये प्रैक्टिकल है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, समाज, सारी समस्याएं आपके अंदर ट्रांसफर होती, क्योंकि आपने संग किसका किया, उसका रंग था आपको, उसका ही रंग है, फिर वो आपका बच्चा हो, आपके पति हो, आप जो भी हो, अब जिनका संग करेंगे बुद्धि से उनके जैसे बन जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपकी ओर प्रभावित हो रही है। इसलिए थॉट है दुनिया में, कहते कि एनर्जी फ्लोस वेयर अटेंशन गोस, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहती है। तो कहना यही है आप जो भी चित्र है उसको बुद्धि में फिक्स कीजिए बाबा का, प्रैक्टिकल करके देखिए, जैसे ही बाबा को याद करेंगे उस रूप में बाबा की सारी ऊर्जा आपकी ओर बहना शुरू हो जाएगी। मन क्या करता है, मन जैसे संकल्प करता है तो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, उसके ऊपर लाइट चलानी है, पंखा चलाना है, गीजर, हीटर, फ्रिज, आपके ऊपर आप क्या करते हैं कन्वर्टर लगाते हैं, फ्रिज में कन्वर्टर बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके कन्वर्ट करा देता है, मतलब फ्रिज की जो भी एनर्जी, गीजर में कन्वर्टर है, हीटर में कन्वर्टर है, ट्यूब में कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, कन्वर्टर बैठे हुए हैं। तो मन आपका कन्वर्टर का काम करता है, रूपांतरण करने का काम करता है, ऊर्जा एक ही आ रही है। जैसे बाबा से ऊर्जा आ रही है तो आपने अगर संकल्प किया कि मेरा पिता गुणों का सागर है, तो आने वाली ऊर्जा गुणों में कन्वर्ट हो जाए बाबा की। बाबा से ऊर्जा आ रही, आपने संकल्प किया मेरा पिता शक्तियों का भंडार है, आने वाली ऊर्जा आपको शक्तियों की महसूसता देगी। ये साइंस है उसका, मन बुद्धि का, योग का साइंस है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको जो भी परमधाम का चित्र अच्छा लगता है, याद रखिए बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, याद रखिए और बुद्धि से उसको देखने का प्रयास कीजिए। बुद्धि से प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे बुद्धि से कैसे। जैसे ही देखिए आपने याद किया परमधाम, परमधाम शब्द उच्चार आवास, तो आपके सामने आएगा लाल सुनहरे रंग का आकाश। फिर मन बोलेगा कि इसमें मेरे पिता बिंदी के रूप में चमक रहे, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी के रूप में चमक रहे, उनसे सफेद रंग की किरणें चारों ओर फैल रही है। मेरे पिता गुणों के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं, उनके पास गुणों और शक्तियों का खजाना है, सारा परम धाम उनके गुणों और शक्तियों की किरणों से भर रहा है, उनकी सारी किरणें मेरी ओर भी आ रही है, मैं आत्मा उनकी किरणों से संपन्न और संपूर्ण हूं। अगर आपका बुद्धि, आपकी बुद्धि चल रही है, मन नहीं चल रहा है, योग नहीं होगा, दोनों चाहिएगा। क्या होता है, मन का स्वाभाविक गुण है चलना, अगर आप नहीं चलाते तो वो कहीं और चला जाता है, फिर बुद्धि भी उसके पीछे भाग जाती है। इसलिए होता क्या है, ऊर्जा तो आ रही है आपकी ओर, मन नहीं चलता तो होता क्या, योग में आपको बताते हैं, जब आपका मन नहीं चलता, जैसे आप शाम को बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं, कभी भी कर्मेंद्र से कर्म बंद हो जाते हैं, जैसे कर्मेंद्र से कर्म बंद हो जाते हैं मन के संकल्प कम होते हैं, मन के संकल्प कम हो गए, मन शांत, मन शांत शरीर शांत, शरीर शांत नीला, सेम सिचुएशन। जब आप योग में बैठते हैं, बुद्धि से बाबा को तो याद किया लेकिन संकल्प नहीं चला है, बुद्धि से याद करने के वक्त एनर्जी तो आ रही है पॉजिटिव, संकल्प नहीं चला रहे, उसके कारण मन शांत, मन शांत शरीर शांत नीला। योग में नींद आने का कारण मन नहीं चल रहा है, जब तक आपका मन चल रहा है तब तक आप जागृत अवस्था में, और मन चलना बंद हो गया आप सुषुप्ति में चले गए, नींद में चले गए, निद्रा में चले गए। मन चल रहा है तब तक आपका योग हो रहा है, और आपका योग आपकी ही कमेंट्री से होता है, कमेंट्री करने वाला कोई भी सामने बैठे, जब तक आपका मन आपकी कमेंट्री नहीं चलाता आपका योग नहीं हो सकता। फिर बाबा भी आके कमेंट्री करा है, योग नहीं होगा आपका, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं संकल्प चला रहा है आप कहीं और हो, बाबा के सामने बैठकर भी न बैठे ऐसी अवस्था हो। इसलिए जब भी आप योग करेंगे बुद्धि से याद करना है, कोई भी बिंदी जिस रूप में आप समझ रहे हो ये बिंदी बाबा है, फिनिश। परमधाम लाल रंग का आकाश, उसमें बाबा चमक रहे, अभी उसके ऊपर संकल्प चला, एनर्जी आ रही बाबा से, गुण और शक्ति आपको जो चाहिए। आपके जीवन में धन की कमी है, जैसे आपने संकल्प किया मेरा पिता सभी खजानों का, गुणों का या शक्तियों का, धन के भंडार का सागर है, आप क्या कर रहे हैं, एक सतह सूक्ष्म ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा ले रहे हैं, वो ऊर्जा धन में कन्वर्ट हो जाएगा आपके जीवन में। आपको बोलना नहीं कि मेरे जीवन में धन की कमी है, जो चाहिए आपको वो बाबा से लेना है और संकल्प करना, आपके पास ज्ञान की कमी है, संकल्प कीजिए बाबा को याद करते समय, मेरा पिता ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान सूत्र, सारी एनर्जी ज्ञान में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आत्मिक स्थिति और योग पक्का करना पड़ेगा, जैसे करते जाएंगे आपको जीवन में अनुभव होता जाएगा कि आप बहुत अलग रीति से बहुत आगे बढ़ रहे, क्लैरिटी से जाइए, थोड़ा कीजिए, फिर से आपको कहते हैं थोड़ा कीजिए, लेकिन अनुभव होना चाहिए आपको, अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो सब टाइम पास है और कुछ नहीं है। समय काटने के लिए हम बैठे हैं, समय काटने के लिए कर रहे हैं, मुरली का एक एक शब्द उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, एक एक शब्द, हर कोई कर्म करो आप करो, आप आत्मा करो, इस प्रकार से जितना भी है आपको अच्छा लगे उठा लीजिए। आज हर किसी को मरने का डर क्यों है, क्योंकि वो नहीं जी रहा है, जो जी रहा है ना, जो जी रहा है वही तो नहीं जी रहा है, इसलिए उसको मरने का डर है। जब आप आत्मा समझ के जिएंगे तो एक दिन में 100 साल के जैसा होगा। आज पेट खा रहा है, आप नहीं खा रहे, जब आत्मा समझ के खाएंगे तो सूखी रोटी में भी भूख पूरी हो जाएगी और तृप्ति मिलेगी। पेट खा रहा है इससे खाने का एहसास नहीं हो रहा है, और जो पेट खा रहा है, जो भोजन को खा रहे हैं, पेट समझ पेट खा रहे हैं, जो भोजन को खाते हैं कुछ समय के बाद भोजन उनको खाता है, क्योंकि पेट समझ कर खा रहे हैं, भूख मिटा रहे हैं, उससे बीमारियां पैदा होंगी। आत्मा समझ के खाएंगे, इस प्रकार हर बात आत्मा समझ के और इस गहराई से योग को खींच जितना हो सके। और अभी बस एक लास्ट सबके दो मिनट, अब सबसे एक छोटा सा सवाल है, अब सबको पक्का निश्चय सतयुग आएगा, 100% निश्चय सतयुग आएगा, बहुत अच्छा, आपका निश्चय देख के अच्छा लगा। अगर आगे चल के मधुबन में बाबा एक ऐसी मुरली चलाते हैं कि चलो बच्चे सतयुग नहीं आएगा, संगम में ही मजे करके, आपका रिएक्शन क्या होगा? और बोलेंगे अरे इतने साल से अमृत वेले उठ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, रोज का क्लास कर रहे हैं, बस ये सुनने के लिए कि सतयुग नहीं आएगा, आपकी रिएक्शन चेक कीजिए। आपने 50 साल से पुरुषार्थ किया है, 20 साल 10 साल जो भी, अच्छा 5 साल से पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा, और बाबा ने आपको पास बुलाया और बाबा ने कहा बच्चे मैं तुझे सत्युग त्रेता में नहीं लाऊंगा, मैं तुझे द्वापर के अंत में लेकर आऊंगा, आपकी रिएक्शन क्या होगी? चेक कीजिए अपने आप। बाबा ने कहा है कि बच्चे कुछ मिले तो मेरे दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, दाल रोटी सामने है, और बाबा ने कहा मैं इसे दूंगा तुझे नहीं दूंगा, आपकी रिएक्शन क्या होगी? चेक कीजिए अपने आप। सत्युग क्या है पता है आपको? सत्युग एक छोटा सा लॉलीपॉप है, बच्चों को देते हैं ना मिठाई, और कुछ नहीं है। अभी क्या हो रहा है, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कब मिलेंगे पुष्प विमान, सोने के महल, ऊंचे वस्त्र, 56 प्रकार के भोग, तो लॉलीपॉप है छोटा सा और कुछ नहीं। और जो दे रहा है ना लॉलीपॉप, वो आपको इतने सारे लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप की फैक्ट्री दे सकता है देने वाला। तो लॉलीपॉप को मत देखो, देने वाले को देखो, बाबा को, सत्युग को नहीं देखना है, देने वाले को देखना है। तो सत्युग एक छोटी सी बात है बाबा के सामने, बाबा से प्यार करना है। आपको पता है सत्युग के आदि में कौन सी आत्माएं आएंगी? सत्युग के आदि में कौन सी आत्माएं आएंगी और आनी चाहिए? जिनके मन में सत्युग के लिए कोई आश नहीं और बाबा के लिए सच्चा प्यार है, वही सत्युग के आदि में आएंगे, सत्युग के शुरू में आएंगे। और जिनको जिनका प्यार सत्युग से ज्यादा और बाबा से कम है, उनका क्या होगा पता है आपको? तेल गेला थूक गेला हाथी रहेगा दुपाटना, और कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्युग से प्यार नहीं कीजिए, बाबा से प्यार कीजिए। सत्युग हमारा ही है, 100% सत्युग आना है। जितना पुरुषार्थ आपने किया वैसी पोस्ट आपको मिलेगी, कहा नहीं जाएगी। दाल रोटी भी बाबा 100% खिलाएगा, लेकिन याद रखना एक हाथ से सत्युग आ रहा है, दूसरे हाथ से देने वाला वापिस जा रहा है, बहुत बड़ी चीज वापिस जा रही है। मिलेगी कब? 4,907, 4,907 तक उसके लिए रुकना पड़ेगा। सत्युग तो मिलेगा डेफिनेटली, सब कुछ सुख मिलेंगे, लेकिन वो जा रहा है तो सत्युग से दिल नहीं लगाएंगे, बाबा से दिल लगाएंगे। सत्युग आपका ही है, कुछ भी हो जाए, अगर बाबा बोलता है कि सत्युग में नहीं लाऊंगा, बाबा को कहना सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में भी मत लाना, तू जब संगम में आएगा तब लेके आना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिल से कहना। बाबा निश्चय की कौन सी भी एग्जाम लेगा हर किसी की। लास्ट टाइम मधुबन को दिल्ली बना दिया बाबा ने, आगे चल के आपके सेंटर को अमेरिका बना देगा, निश्चय रखना। बाबा ने बोला अमेरिका है तो अमेरिका है। हमने भक्ति मार्ग में बहुत कहा है कि तू अगर दिन को रात कहे, रात को दिन कहे तो हम मानेंगे, अभी क्यों नहीं मान रहे? क्या कारण है? वो निश्चय की एग्जाम लेगा और कुछ नहीं लेगा, वो कुछ भी बोलेगा उठपटा, देखेगा कितना ट्रस्ट है बच्चे का मेरे ऊपर। तो कुछ भी हो जाए जीवन में, बाबा के ऊपर का निश्चय नहीं आता, कुछ मिले या न मिले निश्चय नहीं जाना चाहिए। निश्चय गया तो सब कुछ गया, बाबा भी हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विषय। इसलिए निश्चय रखना है, प्राप्तियों के पीछे नहीं भागना और बाबा से प्यार करना, कुछ भी हो जाए अंत तक बाबा के ही रहना। तो अंत तक याद रखिए, हम बाबा के और बाबा हमारा। ओम शांति। सबका बहुत शुक्रिया।